हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द रिशु पटेल शो। और मैं हूं आपका होस्ट रिशु। तो आज मैं आपको पूरा एमबीए करवाऊंगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा एमबीए। तो वो एमबीए नहीं जो आपको डिग्री के लिए चाहिए, बल्कि वो एमबीए जो आपको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। ये एपिसोड है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस समझना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैंने MBA नहीं किया। तो दोस्तों, बिजनेस MBA से नहीं होता, बिजनेस कॉमन सेंस से होता है। आज मैं आपको पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सिंपली बताऊं तो बिजनेस एक रिपीटेबल प्रोसेस है जो ऐसी चीज़ बनाता है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, उसे ऐसे प्राइस पर बेचता है जो लोग पे करने के लिए तैयार हो, और फिर उसे ऐसे डिलीवर करता है जो लोगों की ज़रूरत और एक्सपेक्टेशंस दोनों पूरी करे, और फाइनली इतना पैसा बनाता है ताकि उसका ओनर उसे चलाते रहे। बेसिकली बिजनेस पांच अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन, वैल्यू क्रिएशन, यानी ये ढूंढना कि लोगों को क्या चाहिए और फिर वो चीज़ बनाना। नंबर टू, मार्केटिंग, यानी लोगों की अटेंशन खींचना और उससे अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की डिमांड को बनाना। नंबर थ्री, सेल्स, फिर लोगों की अटेंशन को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बेचना। नंबर फोर, वैल्यू डिलीवरी, यानी लोगों को वो डिलीवर करना जो आपने प्रॉमिस किया है और निश्चित करना कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। नंबर फाइव, फाइनेंस, यानी उस बिजनेस से इतना पैसा कमाना जो आपकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट को वर्थवाइल बनाए। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको इन पांचों पर फोकस करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए इन चीज़ों को डिटेल में कवर करूंगा। सो नंबर वन इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएट करने से पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि लोग किस चीज को वैल्यू करते हैं, यानी ये पता लगाना कि लोगों को क्या चाहिए, जिसे बिजनेस वर्ल्ड में मार्केट रिसर्च कहते हैं। मार्केट रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट देखने के लिए की जाती है। आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं तो क्या फ़ायदा। ये ऐसा है जैसे कि आप बहुत ही बड़ी पार्टी दें लेकिन पार्टी में कोई आए ही ना। बिजनेस की दुनिया में ही अक्सर होता रहता है। डीन कामेन, जो एक जाने माने इन्वेस्टर हैं, उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं सेगवे बनाने में, जो एक टू व्हीलर था जो खुद को ऑटो बैलेंस करता था। फिर जब 2002 में सेगवे लॉन्च हुआ तो माना जा रहा था कि पहले साल में 50,000 यूनिट सेल हो जाएंगी, लेकिन फिर पूरे 5 सालों में कुल मिलाकर 23,000 यूनिट्स ही सेल हो पाई, क्योंकि लोगों को इतना महंगा सेल्फ बैलेंसिंग टू व्हीलर चाहिए ही नहीं था। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत ही नहीं है तो आपका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। इसलिए हमें मार्केट रिसर्च करके पहले से ही पता करना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपने आइडिया की मार्केट रिसर्च करने के लिए आप इन 10 चीज़ों को 0 से 10 तक का स्कोर दें। नंबर वन, अर्जेंसी, लोगों को आपका प्रोडक्ट कितनी जल्दी चाहिए, क्या वो उसके लिए उतावले हैं। नंबर टू, मार्केट साइज, कितने लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या खरीदने के लिए तैयार हैं। नंबर थ्री, प्राइसिंग पोटेंशियल, आपके प्रोडक्ट के लिए लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं। नंबर फोर, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी नए कस्टमर लाना कितना आसान है और उस पर कितना खर्चा आएगा। नंबर फाइव, कॉस्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी, कितना खर्चा लगेगा वो प्रोडक्ट बनाकर उसे डिलीवर करने में। नंबर सिक्स, यूनिकनेस ऑफ ऑफर्स, आपके ऑफर में क्या खास बात है और कितना टाइम लगेगा वो दूसरों को कॉपी करने में। नंबर सेवन, स्पीड टू मार्केट, आप कितना जल्दी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। नंबर एट, अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट, आपको शुरू में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नंबर नाइन, अप सेल पोटेंशियल, क्या कुछ ऐसे और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ सेल कर सकते हैं, जैसे अगर कस्टमर्स गेमिंग कॉन्सोल्स खरीदते हैं तो उन्हें गेमिंग सीडीज की भी ज़रूरत होगी। नंबर 10, एवरग्रीन पोटेंशियल। एक बार अगर शुरू वाला काम हो जाए तो आपको कितना और काम करना पड़ेगा उसके और आगे चलाने के लिए। जैसे कंसल्टिंग बिजनेस में हर दिन टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रियल इस्टेट खरीद लें या एक बुक लिख लें तो वो हमेशा सेल होती रहेगी। तो पहले तो आप अपने आइडिया को इन 10 चीज़ों में स्कोर करें। अगर टोटल स्कोर 50 या उससे कम है तो आइडिया ड्रॉप कर दें, और अगर स्कोर 75 या उससे ज़्यादा है तो आपके पास एक तगड़ा आइडिया है तो आप उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपका आइडिया 50 से 75 के बीच में है तो वो आइडिया घर चलाने के लिए तो अच्छा है, पर वो आपको बहुत अमीर नहीं बना सकता। अब जब हमारा आइडिया पास हो जाए और जब हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, तब आती है बात उस वैल्यू को क्रिएट करने की। वैल्यू कई तरीके से क्रिएट हो सकती है। नंबर 1, प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसे सेल करें, और उसे ऐसे सेल करें जो उसकी बनाने की कॉस्ट से ज़्यादा हो, जैसे फूड आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फोन्स और बहुत कुछ। नंबर 2, सर्विस। लोगों की हेल्प करो, उन्हें कुछ सिखाओ और उसके बदले में उनसे पैसे चार्ज करो, जैसे टीचिंग या कंसल्टिंग। नंबर 3, सब्सक्रिप्शन। लोगों को कुछ बेनिफिट देते रहो और उसके बदले हर महीने उनसे पैसे चार्ज करो, लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार प्रीमियम, अमेजॉन प्राइम। इसी तरह वैल्यू काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। अब हम बिजनेस नंबर 2 की बात करते हैं, जो है मार्केटिंग। तो सिर्फ वैल्यू क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। अब अगर लोग आपके प्रोडक्ट को जानते ही नहीं हैं या उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं तो वो उसे क्यों यूज़ करेंगे? लेकिन लोगों की अटेंशन लेना आसान नहीं है। ज़रा सोचिए, कितनी सारी चीज़ें हर रोज़ हमारी अटेंशन लेने के लिए लड़ती हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ। उसी तरह आपके कस्टमर की अटेंशन भी लिमिटेड है। वो उसे वहीं यूज़ करेगा जहाँ उसके काम की बात हो। तो मार्केटिंग ऐसे लोगों को ढूंढने की आर्ट और साइंस है जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में 6 टिप्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है रिमार्केबल प्रोडक्ट या ऑफर। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपका प्रोडक्ट रिमार्केबल होना चाहिए। रिमार्केबल का मतलब है अलग और एकदम झकास। उसकी डिज़ाइन और उसके फीचर्स में कुछ यूनिक होना चाहिए जो लोग नोटिस करें। जैसे अगर आप एक तबेले में जाएं जहां सारी गायें सफ़ेद हैं, और अगर वहां कोई एक ब्लैक गाय है तो सभी का ध्यान उसी काली गाय पर जाएगा। तो इसी प्रकार हमें अपने ऑफर्स को भी रिमार्केबल बनाना है, और ताकि लोग उसमें क्यूरियस हों और उस पर उनका अटेंशन जाए। नंबर 2, टारगेट प्रोबेबल परचेजर। लेकिन आपको सभी की अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उन कस्टमर्स की अटेंशन चाहिए जो आपके प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें हम प्रोबेबल परचेजर कहते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर शराबियों के मोहल्ले में दूध बेचोगे तो भैया भूखे ही मरोगे। जैसे स्पोर्ट कार कंपनीज लाइक लैम्बोर्गिनी, फरारी, ETC, ये टेलीविजन पर मार्केटिंग नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है जो उनके टारगेट परचेजर या प्रोबेबल परचेजर हैं वो TV पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। इसलिए अटेंशन ग्रैब करो, लेकिन सही जगह और सही लोगों की, जो आपके प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हैं और उसे ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी मार्केटिंग से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट। मार्केटिंग में तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब वो फोकस्ड हो डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट पर। डिज़ायर्ड एंड रिजल्ट कस्टमर की वो इम्पॉर्टेंट नीड है जो आपका प्रोडक्ट पूरी करेगा। लोग आपके प्रोडक्ट की साइंस या उसके फीचर्स जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्या कर सकता है। इसलिए फोकस करें हमेशा उन बेनिफिट्स पर जो आपके कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। नंबर 4, हुक। मार्केटिंग में हुक यूज़ करो। हुक मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपके प्रोडक्ट का मेजर बेनिफिट बताए। कभी कभी हुक को हम टैगलाइन भी कहते हैं। जैसे एप्पल ने iPod के लिए हुक यूज़ किया था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। हमेशा हुक बनाते समय फोकस करें अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पर। पहले सोच के सारे वर्ड्स लिखते जाएं, फिर उन्हें एनालाइज करें कि कौन सा सेंटेंस आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। नंबर 5, कॉल टू एक्शन। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के बाद उन्हें प्रॉपर कॉल टू एक्शन दें। अगर आप उनके मन में अपने प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर जगा देते हैं तो उन्हें सही जगह भेजें। उन्हें प्रॉपरली ये बताएं कि वो आपका प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीद सकते हैं, वो आपकी सर्विस को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रमोशन के साथ उन्हें कॉल टू एक्शन दें, आगे उन्हें क्या करना है। नंबर 6, रेपुटेशन। अक्सर बिजनेस में लोगों का परसेप्शन आपकी रियलिटी बन जाता है, इसलिए बिजनेस की रेपुटेशन और ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। लोग एक रेप्यूटेटेड ब्रांड के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि वो कोई बेवकूफ़ी करेंगे। लोग कोई भी चीज़ लेते समय ये ज़रूर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन दोस्तों रेपुटेशन ओवर टाइम बनती है, इसलिए आपकी ब्रांडिंग और क्वालिटी का कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके ब्रांड के बारे में बातें करने लगेंगे और वर्ड ऑफ माउथ से ही ये स्प्रेड होता जाएगा। अब हम बिजनेस बेसिस नंबर 3 की बात करते हैं, जो है सेल्स। अब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी भी ये सब काफ़ी नहीं है अगर आप उन्हें बेच नहीं पाते हैं। सेल्स ही ऐसा पॉइंट है जो आपके पास पैसा लेके आता है, इसलिए अगर सेल्स नहीं तो कोई बिजनेस नहीं। सेल्स से हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उनके पैसे को डिज़र्व करता है, और साथ ही हम उन्हें ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम अपने प्रॉमिसेस पर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। तो आइए 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं सेल्स के। नंबर 1, बिल्ड ट्रस्ट। सेल्स दो लोगों के बीच में वैल्यू की ट्रांजैक्शन है। आपके पास प्रोडक्ट है जो दूसरे लोगों को चाहिए और उनके पास पैसे जो आपको चाहिए, इसलिए ट्रेड करके दोनों को ही फायदा होगा। दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट नहीं हो तो वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती। आप चाहे कितना भी प्रॉमिस करें, लेकिन अगर लोगों को ये नहीं लगता कि आप उन्हें डिलीवर करेंगे तो वो आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा कॉमन ग्राउंड ढूंढें जहां दोनों को कोई फ़ायदा हो। इस तरह लोगों को फेयरली और ऑनेस्टली ट्रीट करके ओवर टाइम ट्रस्ट बिल्ड करें। नंबर 2, वैल्यू बेस्ड सेलिंग। वैल्यू बेस्ड सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खुद कस्टमर्स की नीड समझकर आप उन्हें समझाते हैं कि आपका ऑफ़र उनके लिए क्यों वैल्यूएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के 1 करोड़ रुपए बचा सकता है, तो अगर आप ये बात उस कंपनी को सही से समझा दें तो वो लोग आपको 15 से 20 लाख रुपए, यानी कि उसका 15 से 20% देने को भी तैयार हो सकते हैं। तो वैल्यू बेस्ड सेलिंग में हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझाकर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सपोर्ट करते हैं। इस तरह हमारी हाई प्राइस भी सेल्स के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन एहसान के बदले एहसान वाली फीलिंग को कहते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो या कोई फेवर किया हो, तो जब तक आप उन्हें कुछ रिटर्न में ना दे दें या कोई गिफ्ट ना दे दें, तो आप उनके आगे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कार सेल्समैन अक्सर ये ट्रिक यूज़ करते हैं। वो किसी कस्टमर के आते ही उन्हें कोई छोटी सी चीज़ जैसे कोई गिफ्ट ऑफर करते हैं, लेकिन कस्टमर जैसे ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, रेसिप्रोकेशन काम करना शुरू कर देता है। वो लोग जो ये छोटी सी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं अक्सर कार लेकर ही जाते हैं। नंबर 4, डैमेजिंग एडमिशन। अगर आपकी चीज़ में कोई फॉल्ट है तो आपको उसे खुद ही ऑनेस्टली बता देना चाहिए, इससे कस्टमर आप पर भरोसा करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई घर या गाड़ी बेच रहे हैं तो आप उन्हें खुद ही बता दें कि उनमें छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, तब वो आपको ज़्यादा भरोसे वाला इंसान समझेंगे और आप उन्हें ज़्यादा सेल कर पाएंगे। अब हम बिजनेस के बेसिस नंबर 4 की बात करेंगे, जो है वैल्यू डिलीवरी। हर कामयाब बिजनेस को सेल्स के बाद वैल्यू डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर कोई डिलीवर नहीं करता तो वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि क्रुक है। वैल्यू डिलीवरी में हर वो पॉइंट आता है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस की उतनी ही रेपुटेशन बढ़ेगी। आइए अब वैल्यू डिलीवरी के तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। नंबर वन, वैल्यू स्ट्रीम। वैल्यू स्ट्रीम वो सारे स्टेप्स हैं जो वैल्यू क्रिएट करने से वैल्यू डिलीवर करने तक लगते हैं। आपके प्रोडक्ट को बनाना, उसे पैक करना, स्टोर करना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब वैल्यू स्ट्रीम में आता है। आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हर प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप उसे ज़्यादा एफिशिएंट और कंसिस्टेंट बना सकें। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये बताता है कि आप वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डायरेक्ट टू यूजर एंड थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात करते हैं डायरेक्ट टू यूजर की। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही चैनल होता है और कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को सेल करती है। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस तरह आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकते। और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मल्टीपल चैनल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। कंपनी अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर्स को बेचते हैं और फिर स्टोर्स कस्टमर्स को बेचते हैं। ये अपनी सेल्स ग्रो करने का बहुत ही तेज तरीका है, पर इसमें रेपुटेशन का रिस्क है। अगर दूसरे लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया तो रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी। पॉइंट नंबर थ्री, स्केल। स्केल का मतलब है कि हमारा बिजनेस कितना एक्सपेंड कर सकता है। बिजनेस को स्केल करने के लिए आपका प्रोडक्ट और सिस्टम को डुप्लीकेट करना इजी होना चाहिए। डुप्लीकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिलायबली वैल्यू को दोबारा बना सकते हैं। जैसे अगर आपने एक डिज़ाइन बनाया लेकिन फिर उसे बहुत सारी कॉपीज़ कर ली, तो आपको हर बार डिज़ाइन दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। जितना ईजिली आप डुप्लीकेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा लोगों को आप वैल्यू दे पाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन ये अलाउ करती है कि आप चीज़ सस्ती और जल्दी बनाकर कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकें। सो हमेशा ये बात ज़रूर याद रखें कि बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल हो और उस बिज़नेस को स्केल करना भी बहुत आसान हो, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसे बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसका प्रॉफिटेबल और उसका स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडे गाइस। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन, सुझाव या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @iamrishupatel पर मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद समवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट। थैंक यू।